हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो ठंडी आवाज में बोला, क्या आपको पता है कि आप पूरे 40 मिनट लेट आई हैं? क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि लेट आने का कारण क्या है? और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपसे कारण पूछूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ कारण नहीं पूछे जाते, यहाँ सीधा सजा दी जाती है। एक पल को सिद्धार्थ की बात सुनकर झलक के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर सिद्धार्थ के दिल में जहर सा घुल गया और वहीं सिद्धार्थ के दिल में भी गुस्सा उबाल मारने लगा। उसे लगा कि ये लड़की यहाँ खड़ी होकर उसका मजाक उड़ा रही है, उसे हल्के में ले रही है। तभी सिद्धार्थ ने और तेज आवाज में कहा, क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? तभी झलक आकांक्षा की आंखों में आंखें डालकर बोली थी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे इस ऑफिस में बिल्कुल नहीं टिकने दोगे और अपनी पर्सनल दुश्मनी मुझसे निकालोगे, इसीलिए मुझे हंसी आ गई मिस्टर सिद्धार्थ खुराना। अब झलक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, चलो एक बात मान लेते हैं कि मैंने अपनी पर्सनल दुश्मनी को अलग रख दिया है और तुम्हारे साथ प्रोफेशनली डील कर रहा हूँ। तो एक काम करो, जाओ और सबसे पहले मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ, और 40 मिनट लेट आने की क्या सज़ा होगी ये मैं तुम्हें पूरे दिन के आखिर में बताऊंगा। ये सुनकर तो झलक पूरी तरह से सन रह गई और बोली, लेकिन मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर क्यों आऊँ? उसके लिए तो आपके पास अपना खुद का नौकर वगैरह होगा ना? झलक की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, क्या, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन पेपर्स पर साइन करते वक्त तुमसे साफ साफ कहा गया था और तुम्हें पेपर्स पर सेंड भी कर दिया गया था कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए हायर की गई हो और यहाँ मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब पर रख रहा हूँ। वो फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नॉर्मल लोगों के साथ काम करने की नौकरी अलग होती है, लेकिन मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना आसान नहीं होगा, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है और जब तक मैं चाहूँगा पूरे 3 महीने तक तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की ही जॉब करनी होगी, और क्योंकि अब तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। अब उससे आर्ग्यूमेंट करके झलक अपना मूड और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ को कुछ नहीं कहा और बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर निकल गई। इस वक्त झलक खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि जितना वो इन लोगों के बारे में सोचेगी उतना ही उसका सिर दर्द करेगा। झलक फालतू बातों पर रिएक्ट करने वालों में से नहीं थी। उसने कॉफ़ी बनाई, लेकिन जैसे ही कॉफ़ी लेकर गई सिद्धार्थ ने एक घूंट लेते ही कहा, ये बिल्कुल बकवास कॉफ़ी बनी है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं शुगर वाली कॉफ़ी नहीं पीता? ये सुनकर झलक मन ही मन बोली, हाँ, शायद इसीलिए आप इतने ज़्यादा कड़वे हैं क्योंकि आप शुगर वाली कॉफ़ी नहीं पीते। लेकिन ऊपर से उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता था, इसलिए मैं बिना शुगर वाली कॉफ़ी भी आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ के गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं रही। वो मन ही मन बोला, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही एडवांस बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भूल गई है कि अभी तो इसके दिन की सिर्फ शुरुआत हुई है। ये सोचते हुए सिद्धार्थ कड़वाहट से हंसा। वहीं झलक ये समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ खुराना उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था, लेकिन आज उसे सिद्धार्थ को लेकर कल जैसा अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिसने अपने बचपन में इतनी ज़्यादा तकलीफें झेली हों उसका दिल पत्थर का हो ही जाता है, ऐसा इंसान जानवर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता। लेकिन फ़िलहाल उसने अनामिका से वादा किया था कि वो सिद्धार्थ और रणविजय का ये सच कभी किसी को नहीं बताएगी और ना ही किसी के सामने लाएगी, क्योंकि पूरे ओबेरॉय परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी को भी ये नहीं पता था कि असल में सिद्धार्थ खुराना और रणविजय सौतेले भाई थे। फिलहाल झलक वहाँ से बाहर गई और रौनित से टकरा गई। झलक ने खुद को संभालते हुए कहा, रौनित जी, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए और तब तक मैं अपना काम समझ लूँ कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। तभी रौनित आँखें नीची करके बोला, मैडम, आज आपको बॉस के सारे ओल्ड फाइल स्टडी करने होंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस बार हमें कुछ खास मुनाफा नहीं होने वाला है। अगर सही जानकारी मिल जाएगी तो हम उसी हिसाब से आगे का प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ये सुनकर झलक को थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन फ़िलहाल उसने हाँ कह दिया। वैसे भी वो सिद्धार्थ का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे रौनित से ही पूछ लिया। वहीं सिद्धार्थ झलक की बातें सुन चुका था और जल्दी से उसने स्टोर रूम का कैमरा ऑन कर दिया। जैसे ही झलक स्टोर रूम में पहुंची और वहाँ फाइलों का अंबार देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। ये सब क्या है? क्या ये पिछले साल की सारी पुरानी फाइल्स हैं? तभी रौनित बोला, जी हाँ मैडम, यहाँ सिर्फ पिछले 6 महीने की फाइल्स हैं, बाकी 6 महीने की फाइल्स दूसरे स्टोर रूम में मिलेंगी, तो आज आपको ये सारी फाइल्स कंप्लीट करनी होंगी। ये सुनकर झलक का सिर पूरी तरह से घूमने को तैयार था। वहीं सिद्धार्थ खुराना अपने कैबिन में बैठा बैठा शैतानी मुस्कान के साथ बोला, बहुत शौक था ना तुम्हें सिद्धार्थ खुराना के साथ काम करने का और साथ साथ मेरी दादी को इस्तेमाल करके खुराना एम्पायर अपने नाम करवाने का। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम ये सब कैसे करती हो, देखता हूँ कि तुम ये सब कब तक झेल पाती हो। ये कहते हुए सिद्धार्थ बेहद भयानक लग रहा था। वहीं झलक की हालत तो और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि पिछली सालों की फाइल्स पर धूल जम चुकी थी। वो कपड़ा उठाकर धूल साफ करती हुई एक एक करके फाइल्स देखने लगी। वहां एक दो नहीं बल्कि हजारों से भी ज्यादा फाइल्स थीं। वो सोचने लगी कि क्या एक साल में सिद्धार्थ खुराना की कंपनी ने इतनी सारी कंपनियों के साथ काम किया है कि इतनी फाइल्स जमा हो गई हैं, या फिर ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इतना तो वो समझ चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ से बचने का यही उसके लिए सबसे बेहतर तरीका था। इसलिए उसने एक एक फाइल उठाई और धीरे धीरे उन्हें चेक करना, पढ़ना और साथ साथ उनकी छोटी मोटी डिटेल्स दूसरी फाइल में ऐड करना शुरू कर दिया। वहीं आज सिद्धार्थ खुराना किसी और काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसकी नज़र बार बार सिर्फ झलक पर जा रही थी। वो लगातार स्क्रीन पर झलक को देख रहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि झलक रोएगी, चिल्लाएगी, शिकायत करेगी कि इतने सारे फाइल्स एक दिन में कैसे दिए जा सकते हैं। लेकिन ये क्या, झलक तो पूरी शांति और सावधानी के साथ बैठकर अपना काम लगातार करती जा रही थी। तो ये बात उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी कि वो इतनी शांति से ये सब कैसे कर पा रही है। और तभी अचानक गुस्से में वो वहां से उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। लेकिन तभी रौनित वहां आ गया और बोला, सर आपकी बैक टू बैक काफी सारी मीटिंग्स है, तो आई थिंक हमें कॉन्फ्रेंस रूम में चलना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा स्टोर रूम की तरफ चला गया। स्टोर रूम में जाकर उसने दरवाजा जोर से पटक दिया। इस वक्त स्टोर रूम में बहुत ही कम लोग जाया करते थे और काफी दिनों से वहां की कोई साफ सफाई भी नहीं हुई थी। जैसे ही सिद्धार्थ वहां पहुंचा, उसने आकर दरवाजा जोर से पटक दिया। दरवाजा पूरी तरह से अटक चुका था। वहीं झलक थोड़ा सा डर गई और सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ तुरंत उसके पास आया और उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, एक फाइल देखने में पूरा 1 घंटा लगा रही हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर समझती हो कि तुम अपने हिसाब से ये 1-2 फाइलें आज की आज कंप्लीट कर लोगी, तो याद रखना यहाँ इस तरह की काम चोरी नहीं चलेगी। फटाफट काम करो और केवल 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 50 फाइल आज पूरी करो।
अब जैसे ही झलक ने ये सुना कि वो पिछले 1 घंटे से एक ही फाइल देख रही है, उसे झटका सा लगा। वो सोचने लगी कि सिद्धार्थ को ये सब कैसे पता चला। तभी उसकी नज़र CCTV कैमरे पर गई। वो सब समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ खुराना इस वक्त CCTV कैमरे के जरिए उसे ही देख रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और आंखों में शरारत चमक उठी। वो सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, लेकिन आपको कैसे पता चला कि पिछले 1 घंटे से मैं सिर्फ 1 ही फाइल पर काम कर रही हूँ? ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा शकपक आ गया और दूसरी तरफ देखने लगा, क्योंकि वो झलक को ये नहीं बताना चाहता था कि पिछले 1 घंटे से उसने कोई काम नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ झलक को ही घूर घूर कर देख रहा था। तभी वो जल्दी से कड़क आवाज में बोला,